أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سورة توبہ کی آیت نمبر 105. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقل اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغیب والشہادت فینبئکم بما کنتم تعملون. اعمال اور اس کا جو سسٹم ہے اور اس کے جو افیکٹس ہیں، آفٹر افیکٹس ہیں، آثار ہیں، اس کے بارے میں بات کرنا شروع کی تھی. اور جو سب سے پہلا اثر عمل صالح ہو چاہے عمل سیئہ ہو، نا صالح ہو، کوئی بھی عمل ہو، تمام اعمال کے اثرات ہیں. تمام اعمال یا تو صالح ہوں گے یا نا صالح ہوں گے. اگر کوئی ایسا عمل جس کا کوئی ہدف نہ ہو بلکہ صرف ٹائم پاس کرنا ہو، وہ بھی بالآخر صالح کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا بلکہ ناصالح کی کیٹیگری میں آئے گا. البتہ بعض ایسے اعمال ہیں جو، اب یہ جو بات ہو رہی ہے اعمال کی وہ اختیاری اعمال کی بات ہو رہی ہے. البتہ بعض ایسے اعمال ہیں جو اختیاری نہیں ہے، مثلا سانس لینا اختیاری نہیں ہے. لیکن یہی سانس لینا جو اختیاری نہیں ہے، یہ ممکن ہے صالح شمار ہونا شروع ہو جائے نظام اعمال کے اندر، خدا کے اس سسٹم کے اندر. خود ماہ رمضان کے اندر بھی احادیث میں موجود ہے کہ انسان کی سانس بھی جو ہے وہ عبادت شمار ہوتی ہے. انسان کا اور بھی جو دیگر غیر اختیاری اعمال ہیں وہ بھی عبادت شمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں ماہ رمضان کے اندر. تو ممکن ہے ماہ رمضان کے علاوہ بھی اگر انسان وہی اعمال انہی نیات کے ساتھ، اور پاسبلٹی ہے کہ اب یہ روایات کے اندر مزید ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا ماہ رمضان کے علاوہ بھی آیا پاسبل ہے کہ یہی غیر اختیاری اعمال جیسے سانس لینا، کیا یہ دیگر ایام میں بھی عبادت شمار کیا جا سکتا ہے یا نہیں. لیکن ماہ رمضان میں تو یقینی اور قطعی ہے بس. لیکن اس وقت جو ان تمام سیشنز کا جو ہدف ہے وہ اعمال اختیاری، عمل اختیاری کے بارے میں بات کرنا ہے، اور اس کے اندر جو خدا نے نظام رکھا ہے اس کو دیکھنا، اور وہ مد نظر ہے ہمارے. لاسٹ سیشن میں جو بات ہوئی تھی وہ سب سے پہلا اثر عمل صالح کا، وہ بلکہ کلی عنوان عمل انسان کا، وہ یہ کہ انسان کا جو عمل ہے وہ اس کے ماضی کے تمام اعمال میں اثر انداز ہوتا ہے. یعنی اگر انسان اس وقت، ٹھیک ہے، ایمان کے جس کرنٹ سٹیٹس پر ہے، جس لیول آف سٹیٹس پر ہے ایمان کے، اس کرنٹ سٹیٹس میں اگر انسان کوئی اچھا عمل انجام دیتا ہے، عمل صالح اور حسنہ انجام دیتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اس کا افیکٹ یہ ہوگا کہ ماضی کے اندر جتنے بھی انسان نے اعمال صالحہ انجام دیے تھے، عمل صالح انجام دیے تھے، اس لو سٹیٹس لیول آف ایمان پر، یہ میرا آج کا عمل ان تمام اعمال کو اس کرنٹ سٹیٹس پر لے کر آئے گا، ایمان کے اس کرنٹ سٹیٹس پر ترقی دے دے گا، اس کا لیول بڑھا دے گا، ان کے لیولز کو بڑھا دے گا. تو یہ پہلا اثر ہے. ہاں، اگر انسان کوئی برا عمل انجام دے، کوئی گناہ انجام دے، خدا نخواستہ کوئی عمل سیئہ انجام دے، تو کیا ہوگا؟ ماضی کے تمام اعمال جو اچھے اعمال تھے، ان اعمال میں جو جس لیول آف ایمانی پر اس نے اعمال انجام دیے تھے، اس لیول آف ایمانی، یا بلکہ یوں کہوں کہ وہ روح ایمان کم ہو جائے گا، ضعیف ہو جائے گا انسان کا. یہ گناہ کی صورت میں ہے اور پچھلے اعمال کی نسبت. آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ अमल सालिह का असर इंसान के मुस्तकबिल के तमाम आमाल में सिरायत करता है, असर अंदाज होता है। और इसी तरह अमल ना सालिह, अमल सैया इंसान के फ्यूचर के तमाम आमाल में भी असर अंदाज होता है। किस तरह, वो इंशाल्लाह हम देखेंगे। अब यहाँ पर दो आयतें हैं सूरह बकरा की, लेकिन मैं एक बात पहले ये आपसे अर्ज कर दूं, वो ये कि खुद हम अमल सालेह किसको कहते हैं, डेफिनेशन क्या है अमल सालेह की। ठीक है, कितनी दफा अमल सालेह को कुरान के अंदर ईमान के साथ शुमार किया गया, ईमान अमल सालेह, ईमान अमल सालेह कई दफा आया है। खुद अमल सालेह क्या है, उलमा ये फरमाते हैं कि अमल सालेह दीन के तमाम अहकाम पर अमल पैरा होना, दीन के जितने भी दस्तूरात हैं, चाहे वो फिकही दस्तूरात हो चाहे वो अखलाकी दस्तूरात हो, तमाम के तमाम दस्तूरात दीनी को अंजाम देना अमल सालेह कहलाता है। ठीक, ये एक बहुत कुल्ली डेफिनेशन है, लेकिन आप इसको मसलन तौजील मसाइल के अंदर जितने भी अहकाम आए हैं, फिक्स हैं मजबूत, नमाज रोज़ा हज ज़कात खुम्स वगैरह, इसी तरह अखलाकी दस्तूरात, ओके, जितने भी ये सारे दस्तूरात हैं उनको इजरा करना, उनको इम्प्लीमेंट करना अपने वजूद के अंदर और उसको अप्लाई करना, वो ये कहलाता है अमले सालेह। अब हम ये देखते हैं कि इसका असर फ्यूचर के आमाल में, आयत ये है, देखें आयत सूरह बकरा की आयत नंबर 261, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मसलुल्लज़ीना युन्फिकून अमवालहुम फी सबीलिल्लाह कमसल हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बतिन वल्लाहु युदाफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। वो लोग जो फी सबीलिल्लाह अपने अमवाल का, अपने माल का, अपनी सरवत का इन्फाक करते हैं, ये इन्फाक करना, अब इसकी मिसाल क्या है, खुदा देना, कमसल हब्बतिन, हब्बतिन ये उस बीज की मानद है जिसे जब बोया जाता है तो उसका नतीजा ये होता है कि उस बीज के बोने से 7 फसलें उगती हैं, फिर हर फसल में 100 दाने निकलते हैं, आउटपुट 100 दानों का आउटपुट निकलता है। अब इस मिसाल को आप जहन नशीन करें, ठीक है, अमवाल को, सरवत को इन्फाक करना, अलबत्ता इन्फाक की बहुत सारी कैटेगरीज हैं उसमें हम नहीं जाते, तफासीर में अहादीस में मौजूद है, लेकिन फिलहाल इसका जाहिरी माना लेते हैं कि अमवाल जो आपके जहन में आ रहे हैं वही माना लेते हैं कि अमवाल को फी सबीलिल्लाह राह खुदा में इन्फाक करना, ये कमसले हब्बतिन, ये उस बीज की तरह है जो जिसे जब बोया जाता है तो 7 फसलें उगती हैं और हर फसल में 100 दाने उगते हैं। अब ये आयत, अब दूसरी आयत देखते हैं यहां पर, यानी सूरह बकरा की ही है 265, वो आयत 261 थी, ये 265। ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة دیکھیں وحبت آیتا یا بھائی جنت آیا بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل फतल्लुन वल्लाहु बिमा तअमलूना बसीर। और जो लोग अपने अमवाल को रिजाए खुदा की तलब में, रिजाए खुदा की खातिर और अपने नफ्स के इस्तेहकाम और मुस्तहकम करने की गरज से खर्च करते हैं, उनके माल की मिसाल किस किसकी तरह है, कमसली जन्नतिन, एक बाघ की तरह है जो किसी बुलंदी पर है और वहां पर तेज बारिश हो रही है। और नतीजे में देखें हमारा जो आयत के अंदर जो मेन वर्ड है जो जिसपे फोकस करना है वो क्या है, फआतत उकुलहा ज़िफ़ैन। वहां क्या था, वहां पर भी उस दूसरी आयत पिछली आयत में भी इसी के शबी आउटपुट बयान किया गया है। वहां पर मिसाल दी हब्बतें की बीच की, यहां पर कमसले जन्नतें, यानी अगर एक इंसान अपने अमवाल को फी सबीलिल्लाह, ये एक मरतबा है, यानी आप अपने अमवाल को खर्च करें फी सबीलिल्लाह, तो इसकी मिसाल एक बीज की तरह है जो 7 फसलें और फिर हर फसल में 7 दाने उगाती है। अब यहां पर इस आयत में क्या है, अगर इंसान अपने अमवाल को एक और मरतबा बालातर यानी रिजाए खुदा की खातिर, यानी देखिए एक लेवल फी सबीलिल्लाह है, एक लेवल रिजाए खुदा की खातिर है, ये बालातर लेवल है ये, तो इसकी मिसाल जन्नत की मानंद है कि जिसका आउटपुट भी अब यहां पर यही दिया गया है। यहाँ ये बताया गया है इस आयत में कि अगर तेज बारिश ना आए तो मामूली बारिश ही काफी हो जाए, और यहां पर जो अमल का जो आउटपुट है कम असल जन्नतिन में, ये दोगाना है, यहां पर डबल है, वहां पर भी डबल है एक खास कैफियत के साथ, यहां पर भी डबल है एक खास बालातर कैफियत के साथ। बात क्या हो रही है, देखें ये खुदा ने यहां पर उस सिस्टम ऑफ आमाल का की एक निशानदेही की है हमारे लिए। खुदा ये बताना चाह रहा है कि तुम्हारे एक इन्फाक का ये इतने सारे असरात हैं। सही, एक आयत में ये बताया, दूसरी आयत में उस असर की कैफियत को बढ़ाकर खुदा ने बयान बढ़ा से बढ़ाने से मुराद ये कि खुदा ने सिस्टम ऐसा बनाया है आमाल का। अब ये जो आमाल का जो सिस्टम है, यानी खुद इस आयत में जो इन्फाक का बताया गया है, इसका असर ऐसा नहीं है कि आपको आखिरत में मिलेगा, नहीं, इसका असर खुद दुनिया के अंदर सबसे पहले इंसान को मिलता है, सबसे पहला असर दुनिया में है। अब हम इसको तदबीक करते हैं खुद अमल सालेह के अंदर। अब आप अमल सालेह, जिस तरह मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि जो भी दस्तूरात अखलाकी हैं, दस्तूरात फिकही हैं और दीगर जो दस्तूरात हैं, उन तमाम को बजा लाना अमल सालेह कहलाता है। किसी को आप सलाम करते हैं, सलामुन अलैकुम कहते हैं, ये अमल सालेह है। किसी मोमिन के सामने मुस्कुराते हैं, ये अमल सालेह है। किसी अब फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे मेहमान आए, आपके मेहमान बिजी हैं, आप क्या करते हैं, मेजबान मेजबान जाता है, मेहमान के जितने भी जूते हैं उन तमाम जूतों को सेट कर लेता है, ठीक है, ये क्या है, अमल साले है। ये सब दीनी तालीमात के अंदर वारिद हुआ है। अब आप मरहूम शेख सद्दूक रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, सवाबुल आमाल व किताब व इकाबुल आमाल, सवाबुल आमाल व इकाबुल आमाल, तमाम अहादीस के अंदर आमाल के जितने भी सवाब जिक्र किए गए हैं उन तमाम सवाब को उन्होंने लिस्ट डाउन किया है कि ये अमल, फॉर एग्जाम्पल ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का ये सवाब है, किसी को सलाम करने का ये सवाब है, नमाज वाजिब के साथ नमाज नाफिला पढ़ने का ये सवाब है, नमाज शब का ये सवाब है, सिले रहमी का ये सवाब है। ये जितने भी सवाब बयान हो रहे हैं, ये मैं आपको बहुत ही एक कलीदी नुक्ता बता रहा हूं, हमारे जहनों में सवाब क्या है, एक खास अब बहुत सारी चीजें सवाब के हवाले से भी 2 या 3 नजरियात मौजूद हैं जो खास समय हमारी सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं। एक फॉर एग्जांपल नजरिया ये है कि आप ये अमल अंजाम दें ताकि सवाब तक पहुंचे, खूब बिल्कुल सही है, सही। दूसरा नजरिया क्या है कि सवाब सिर्फ एक अट्रैक्शन है, सवाब सिर्फ एक चॉकलेट की तरह है, या मिसाल भी यहाँ दी जाती है कि एक माँ जो है वो अपने बच्चे को जब खाना खिलाती है और वो खाना नहीं खाता तो उसको टॉफी या उसको चॉकलेट का एक खास लालच देती है और कहती है कि तुम ये खाना खाओ, क्यों, क्योंकि खाना बच्चे के लिए उसकी हयात का जामिन है, सही, ये बच्चा नहीं समझ रहा लेकिन माँ समझती है, जब वो खाना खा लेता है तो उसको टॉफी दे देती है। अब ये एक थॉट है, ये एक नजरिया है सवाब के कि सवाब सिर्फ एक अट्रैक्शन है, लेकिन निजामे आमाल के उनवान से आप देखें तो सवाब से रिट्रैक्शन नहीं है, बल्कि सवाब, मसलन मैं आपको कहा ना, हदीस में है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का ये असर है, ये सवाब है, नमाज शब का ये सवाब है, सिले रहमी का सवाब ये है कि इंसान की उम्रों में इजाफा होता है, और सवाब बेतहाशा बयान किए गए हैं अहदीस के अंदर। और हम ये भी जानते हैं कि अइम्मा अलैहिमुस्सलाम कोई भी बात बगैर हिकमत के नहीं करते, खुदावंद मुताल कोई बात कुरान के अंदर बगैर हिकमत के नहीं लाता। अगर कहा है कमा साले हब्बतिन अम्बतत सब आसनाबिल, तो ये हकीकत है, ये अट्रैक्शन के लिए फकत नहीं है, ये दर हकीकत खुदा ने निजाम आमाल के अंदर कवायद सेट किए हैं, कवायद बनाए हैं उस। अब ये बहुत दकीक बात है, आप इसके ऊपर गौर करें, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि खुदा ने जो आमाल का जो सिस्टम बनाया है उस सिस्टम को बताने के लिए हमारे अल्फाज, हमारी जो, हमारे इंसानों की जो फहम है, इंसानों की जो फहम का जो स्टेटस है उसके मुताबिक, ताकि हम समझ सकें, मैं और आप यानी मामूली इंसान इस निजाम आमाल को समझ सकें, आइम्मा अलैहिस्सलाम ने इस निजाम आमाल को सवाब की सूरत में बयान किया है। ये सिर्फ सवाब नहीं है सही, बल्कि क्या है, निजाम आमाल को बयान किया जा रहा है। अब बाद में इंशाल्लाह मैं एक या दो सेशंस बाद एक ऐसी हदीस लेकर आऊंगा, अगर आपको याद हो फर्स्ट सेशन में हमने ये बात की थी कि इंसान जब मस्जिद बनाता है तो उसका असर यह है कि जन्नत में घर नसीब होता है इंसान को। अब एक और हदीस है कि जिस मुफस्सल है, आई थिंक 4 to 5 लाइंस की हदीस है कि इंसान जब मस्जिद बनाता है खुदा के लिए तो उसका उसके इसका एक असर नहीं है बल्कि असरात मुख्तलिफ हैं, यानी जन्नत में ये होगा और जन्नत के घर में इंसान जब जो घर मिलेगा उस घर के अंदर मसलन 70 खादिम होंगे। ये सब क्या है, ये सब अट्रैक्शन के लिए है, अट्रैक्शन के लिए नहीं है बल्कि उस अट्रैक्शन के लिए भी है, लेकिन सिर्फ इस ये माना नहीं करें हम कि ये अट्रैक्शन के लिए बस, बल्कि आइमा अलैहिस्सलाम इस अट्रैक्शन के जमीन में उस निजाम आमाल और उसके कवायद बयान कर रहे हैं कि ये असरात हकीकी हैं, और ये असरात जो कि हकीकी हैं फकत जन्नत में आपको नहीं मिलेंगे बल्कि सबसे पहले दुनिया के अंदर नसीब होंगे आपको। अगर 70 खादिम इंसान को जन्नत में नसीब होने हैं मस्जिद बनाने की खातिर, तो ये 70 खादिम उसकी एक खास सूरत, एक खास शक्ल दुनिया में आपको मिलेगी, एक खास नेमत की सूरत में, एक खास नेमत की सूरत में। अब इसी तरह अमले ना सालेह के अंदर भी ये है। अब ज्यादा हम साइड की बातों पे नहीं जाते हैं, हम आते हैं अब अमल साले, मैंने आपको कहा था अमल लम्हा बे लम्हा है, चाहे साले हो, अब कोई भी बात हो, आप टीवी देख रहे हैं, टीवी के बाद आपने टीवी का रिमोट स्विच ऑफ किया आपने टीवी को, उसके बाद आप दूसरे काम में लग गए, एक एक लम्हा इंसान का अमल है। आप सोफे पे बैठ के अगर टीवी देख रहे हैं, टीवी बंद करके आप उठ रहे हैं सोफे से, चल के जा रहे हैं कहीं पर, ये सब आमाल हैं, ये सब इंसान का अमल है, ये वॉकिंग भी इंसान का अमल है, बस अमल लम्हा बल लम्हा है। अब अगर ये है, अब आप देखें खुदा ने क्या कहा है कि आपके और मेरे हर अमल का आउटपुट दोबाला होगा, डबल होगा, ज़िफ़ैन। अब इसको आप दकी कैलकुलेशन करें तो क्या होगा, यानी अगर मैं इस वक्त एक अमल सालेह अंजाम देने में मशगूल हूं, बहुत गौर से सुने इसको, बहुत गौर से, अगर मैं इस वक्त अमल सालेह को अंजाम देने में मशगूल हूं तो नतीजा ये होगा, उस लहजे बे लहजे और लम्हा बे लम्हा वाली बात को हम नजर में रखें इस वक्त, ठीक है, वो बात जहन में हो, अब आप अमल सालेह अंजाम दे रहे हैं, एक अमल सालेह अगर मैं अंजाम दे रहा हूं नतीजे में क्या होगा, उस आयत की जमीन में, उस आयत को देखते हुए नतीजे में ये होगा कि इस अमल सालेह का नतीजा दो अमल सालेह होंगे, एक अमल सालेह का नतीजा दो अमले साले, यानी अगले लम्हे में आपको एक और अमले साले मिल रहा है, यानी दो अमले साले, बल्कि माजरत, एक अमल, यानी मैं अगर तिलावत कुरान कर रहा हूं, ये अमल साले है, ठीक है। अब इसको अंजाम देने के नतीजे में क्या होगा, दो अमल सालिह मुझे नसीब होंगे। ये कैलकुलेशंस खुदा ने बनाई हुई है, सेट की हुई है निजाम हस्ती के अंदर। खूब, अब क्या हो जाएगा, अब ये मैथ्स के सिंपल सवाल आते हैं। अब कितने आमाल हो गए, एक और प्लस दो, तीन आमाल हो गए। अब तीन आमाल जो मुझे मिल गए, दो आमाल, एक अमल मैंने अंजाम दिया, दो आमाल, दो अमल मुझे गिफ्ट में मिले, अब कितने हो गए, तीन। अब 3 × 2 करें आप, कितना हो जाएगा, 6। यानी अब दूसरे लहजे के अंदर मुझे 6 अमले सालेह नसीब हो रहे हैं। तीसरे लम्हे में आप देखें क्या होगा, तीसरे मोमेंट में क्या होगा, 18, 18 अमले सालेह पे दर पे आपको अमले साले नसीब हो रहे हैं। ये खुदा का, अगर इस निगाह से, ये रिवायात के अंदर ये मौजूद है, ये मैं अपनी तरफ से बयान नहीं कर रहा हूं, ये इसके ऊपर किताबें मौजूद हैं, तफासीर मौजूद हैं, और मैंने आपको कुछ सोर्सेज भी बताए। खुद अल्लामा तबातबाई ने रहमतुल्लाह अलैह ने अलमीज़ान में इस सिस्टम को बयान किया है, और ये आमाल की। अब इस निगाह से, इस व्यू, इस ओवरव्यू से, ये मेरी निगाह है अमल साले की तरफ। अब आप देखें क्या मेरे अंदर, आपके अंदर अमल साले साले को अंजाम देने का शौक नहीं बढ़ेगा। जब शौक बढ़ेगा और मैं अमल साले को अंजाम दूंगा, तो नतीजे में मेरी जिंदगी की मुश्किलात हल नहीं होंगी। सिंपल सा सवाल है, सही। अब आयतुल्ला बहजत रहमतुल्ला अलैह बहुत खूबसूरत बात फरमाते हैं यहाँ पर। आयतुल्ला बहजत फरमाते हैं कि हम जो जिंदगी के अंदर आज मुश्किलात से जो दोचार हैं, वो हमारी अपनी पैदा करदा महरूमियतों की वजह से है। हमने खुद अपने आप को महरूम किया हुआ है, जिसके नतीजे में आज हमारी जिंदगी और इस फिजिकल लाइफ में ये मुश्किलात मौजूद है। किस चीज से हमने अपने आप को महरूम किया है, इस निगाह से, अमल की तरफ ये निगाह होना, अहादीस को ना पढ़ना, कुरान को समझने के उनवान से ना पढ़ना, ये सारी तालीमात कुरान और इत्रत के कलाम में मौजूद है, सारी मौजूद है। अब खुदा ने देखे सूरह बकरा की आयत नंबर 261, 265 के अंदर ये बयान किया है कि अमल की क्या तासीर है। इन्फाक को एक नमूने के तौर पर खुदावंद मुताल यहां पर लेकर आए हैं, लेकिन ये कुल्ली कायदा है, यहां पर फकर एक जुजी चीज नहीं है इन्फाक से मरबूत। बस एक सादा सा अमल, आप किसी के जूते सेट कर दें, आपके घर के अंदर जो मेहमान आए जूते सेट कर दें, किसी को सलाम करें, आप किसी मोमिन की मुश्किल को हल करें, ये सब अमले साले हैं, और इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट, हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। बल्कि इसको यूं कहूं तो बेहतर, एक तो हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, और जब आप इसको अंजाम देंगे, नतीजे में आपका जो फाइनेंशियल कैपिटल है, मादी कैपिटल है और मानवी कैपिटल है, उसमें इजाफा होगा। तो ये अमल का नतीजा मुस्तकबिल के तमाम आमाल से मजबूत है। लेकिन अब यहां पर असल बात रहती है, वो क्या है, अब इससे आपने क्या नतीजा निकाला, जब मैंने आपसे ये कहा कि अमल सालेह जब इंसान अंजाम देता है तो नतीजे में दो अमल सालेह नसीब होते हैं, उसके नतीजे में 3, 6, 18 और मल्टीप्लाई करते जाएं आप, मल्टीप्लाई इफेक्ट अप्लाई करते जाएं आप। यानी इंसान जब अमल सालेह अंजाम देता है, तो आने वाले जमाने के अंदर तौफीक उसको नसीब होती है दीगर आमाल सालेहा को अंजाम देने की। तौफीक, एक अमल साले तौफीक है अमल साले बाद। अब ना साले अगर खुदा ना खासा अंजाम गुना अंजाम दे, तो उसका फ्यूचर में इफेक्ट क्या होगा, अब आप खुद नतीजा निकालें। अगर इंसान अमल ना साले को, सैया को, गुना को अंजाम दे खुदा ना खासा, नतीजे में ये होगा कि आइंदा अगर उसको, उसने ये तय किया था कि मैं आमाल सालेहा को अंजाम दूंगा, या उसको तौफीक नसीब होनी थी, तो इस गुनाह की वजह से ये तमाम तौफीकात सल्ब हो जाएंगी। تمام توفیقات سلب ہو جائیں گی اس سے. یہ عمل ناصالح کا نتیجہ ہے. بس انسان اگر گناہ انجام دے تو آئندہ انجام فیوچر میں انجام پانے والے عمل صالح کی توفیقات سلب ہو جاتی ہیں. عمل صالح انجام دے تو فیوچر میں مزید اور ملٹیپلائنگ عمل صالح کو اعمال صالح کو انجام دینے کی اس کو توفیق نصیب ہوتی ہے. اب اعمال کے جو دیگر اثرات ہیں انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ سیشن میں دیکھیں گے. وہ کیا اثرات ہیں؟ اگر وہ لسٹ آپ کے ذہن میں وہ وائٹ بورڈ اینیمیشن, تو اس میں یہ بات ہوئی کہ انسانوں سے مربوط میرا ایک عمل ماضی میں تمام انسانوں کے اعمال اور ان کے وجود کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں. میرا یہ عمل آنے والے تمام انسانوں کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں, اور اطراف میں جتنے بھی انسان ہیں, میری اس وقت کی زندگی میں جتنے بھی انسان عالم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں, ان کے اوپر یہ عمل صالح, میرا ایک عمل صالح یا ناصالح کس طرح اثر گزار ہو رہا ہے. اور آخری وہ یہ کہ حوادث عالم میں دنیا کے اندر جو واقعات ہوتے ہیں, حوادث, زلزلہ, بیماریاں, ان کے رونما ہونے پر میرا ایک عمل کتنا اثر رکھتا ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر ہم میکسیمم یا تو ایک سیشن میں ان تمام اثرات کو ایک سیشن میں دیکھ لیں گے, اور پھر ہم آئیں گے اس ٹاپک پر کہ کیا کہ ہمارے اعمال ائمہ علیہ السلام اور امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں, کن اوقات میں, کس ٹائم پر. ہم نے یہ سنا ہوا ہے کہ فقط پیر اور جمعرات کو یا فقط شب جمعہ کو, جبکہ تقریباً شاید 7 سے 10 روایتیں موجود ہیں, اور تمام ان روایات کے اندر مختلف اوقات بیان کیے گئے ہیں. کسی روایت کے اندر منڈے اور تھرسڈے, کسی روایت میں شب جمعہ, کسی روایت میں وہ دن, یہ دن سال میں ایک دفعہ. تو یہ روایتیں اتنی مختلف کیوں ہیں؟ آیا ان میں ٹکراؤ ہے یا نہیں ہے؟ اس کو ہم آیا جمع کر سکتے ہیں ان روایات کو؟ انشاءاللہ اس کو خدا کے اذن سے اگلے سیشنز میں دیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على